एक खुशहाल रिश्ते का एक मुख्य तत्व के रूप में साप्ताहिक बातचीत एक परिचय तीन सवालों के साथ साप्ताहिक जोड़ी संवाद का सिद्धांत। मैंने तुम्हें किस बात से चौंका दिया, मैंने किस बात से तुम्हें निराश किया, मैं अपने बारे में क्या बदल सकता सकती हूँ। एक खुशहाल रिश्ते के लिए आजमाई हुई सलाह है कि सप्ताह में एक बार एक निश्चित संवाद जोड़े के रूप में किया जाए। इस बातचीत में दोनों साथी एक दूसरे के लिए जानबूझकर समय निकालते हैं और तीन खास सवाल पूछते हैं। जब एक बोलता और जवाब देता है तो दूसरा ध्यान से सुनता है, बिना टोके, बिना विरोध किए। इसके बाद बोलने का अधिकार बदल जाता है। यह नियमित संवाद एक सुरक्षित माहौल बनाता है जिसमें दोनों बीते सप्ताह की सकारात्मक और नकारात्मक बातों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। साप्ताहिक संवाद ही क्यों, क्योंकि यह मदद करता है छोटी छोटी बातों को समय रहते उठाने में, इससे पहले कि वे बड़े विवाद का रूप लें। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो जोड़े नियमित रूप से खुलकर बात करते हैं उनमें कम नाराजगी और गलतफहमियां पनपती हैं। बातें मन में दबाने के बजाय संवाद बना रहता है। ऐसे नियमित संबंध संवाद आपसी सराहना बढ़ाते हैं और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करते हैं। यह एक साप्ताहिक रीसेट या रिश्ते का चेकअप जैसा है। आप एक दूसरे के मन की बातों से अपडेट रहते हैं और हम भावना को मजबूत करते हैं। आगे हम उन तीन सवालों को विस्तार से देखेंगे जो इस साप्ताहिक रिवाज में पूछे जाते हैं। हर सवाल रिश्ते की गुणवत्ता के लिए एक खास मकसद पूरा करता है। हम हर सवाल का महत्व समझाएंगे, संभावित जवाबों के उदाहरण देंगे और बताएंगे कि जवाबों के साथ सबसे अच्छा कैसे व्यवहार करें। अंत में कुछ व्यवहारिक सुझाव मिलेंगे कि इस साप्ताहिक संवाद को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जा सकता है। सवाल एक, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते किस बात से चौंका दिया। यह पहला सवाल बीते सप्ताह की सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें साथी से जानना होता है कि कौन सा व्यवहार या गुण खास तौर पर अच्छा लगा, संक्षेप में किससे आप दूसरे को अप्रत्याशित खुशी दे सके। इस सवाल का मकसद सराहना और आभार जताना है। अक्सर रोजमर्रा की छोटी छोटी प्यारी कोशिशें या इशारे नजरअंदाज हो जाते हैं। जब साथी बताता है कि उसे क्या अच्छा या चौंकाने वाला लगा तो ऐसे इशारे सामने आते हैं और उनकी कद्र होती है। इस सवाल का महत्व है सकारात्मक बातों को जानबूझकर उजागर करना। रिश्तों में सिर्फ समस्याओं की चर्चा करना ही नहीं बल्कि एक दूसरे की सराहना भी जरूरी है। जोड़ों पर हुई मनोवैज्ञानिक स्टडीज से पता चला है कि आपसी सराहना और आभार रिश्ते में संतुष्टि को काफी बढ़ाते हैं। जब साथी बताता है कि उसे किस बात ने सकारात्मक रूप से चौंका दिया तो दूसरा खुद को देखा और प्रोत्साहित महसूस करता है कि वह ऐसे प्यारे काम आगे भी करे। साथी इस तरह की शुरुआत से संवाद में सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है। आप मुस्कान और अच्छे एहसास के साथ शुरू करते हैं जिससे बाद में मुश्किल बातों पर चर्चा करना भी आसान हो जाता है। जोड़ों पर शोध की एक प्रसिद्ध नियमावली कहती है कि खुशहाल जोड़ों में सकारात्मक इंटरैक्शन नकारात्मक से ज्यादा होते हैं। यह पहला सवाल सकारात्मकता को जागरूकता से सामने लाने और खूबसूरत पलों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सवाल एक के जवाबों के उदाहरण यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जब किसी साथी से पूछा जाए कि उसे पिछले हफ्ते किस बात से चौंकाया गया तो वह क्या जवाब दे सकता है। तुमने मुझे चौंका दिया जब तुमने अचानक मेरा पसंदीदा खाना बनाया। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने बिना किसी वजह के मुझे फूल लाकर दिए। यह इशारा अप्रत्याशित और बहुत प्यारा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे साथ शाम की सैर के लिए समय निकाला जबकि तुम्हारे पास बहुत काम था। तुमने मुझे सच में चौंका दिया जब तुमने घर की सफाई कर दी जब मैं बाहर था। घर लौटकर सब कुछ साफ सुथरा देखना यह मेरे लिए शानदार सरप्राइज था। मुझे यह देखकर अच्छा और आश्चर्यजनक लगा कि तुमने पिछले हफ्ते मेरे कठिन कार्यदिवस के बाद इतनी ध्यान से पूछा और मेरी बात सुनना चाहा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो सिर्फ उदाहरण है। हर जोड़ा और हर सप्ताह अलग होता है। जरूरी है कि जवाब देने वाला साथी ईमानदारी से बताए कि उसे क्या अच्छा लगा। इसमें छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें भी शामिल हो सकती हैं। अक्सर यही छोटी छोटी बातें जैसे सही समय पर गले लगाना या पसंदीदा ड्रिंक लाना बड़ा असर डालती है और उल्लेखनीय होती है। सवाल एक के जवाब के साथ व्यवहार पूछने वाले यानी उस पल में सुनने वाले के लिए इस सवाल का जवाब सबसे पहले है। सुनना और स्वीकार करना। जो तारीफ या सराहना मिल रही है उसका आनंद ले। यह सुनना कि आपने क्या अच्छा किया आत्मसम्मान को मजबूत करता है। साथ ही जवाब कीमती संकेत देता है कि साथी के लिए क्या महत्वपूर्ण है और किससे उसे खुशी मिलती है। अगर उदाहरण के लिए सामने आता है कि तनावपूर्ण दिन के बाद अचानक गले लगाना अच्छा लगा तो इसे भविष्य के लिए प्रेरणा के रूप में लिया जा सकता है। कई जोड़े अनुभव करते हैं कि इस सवाल से एक
छोटा आह पल आता है। आपको पता चलता है कि आपके किस व्यवहार को साथी ने सकारात्मक रूप से लिया। कभी कभी वह जिसे आपने खुद इतना खास नहीं समझा था, जरूरी है कि सराहना लौटाई जाए। एक साधारण धन्यवाद यह सुनकर बहुत अच्छा लगा उपयुक्त प्रतिक्रिया है। इससे साथी को भी अपनी तारीफ सुनी गई महसूस होती है। कुल मिलाकर यह आदान प्रदान एक गर्म सकारात्मक माहौल बनाता है और दोनों को मजबूत करता है। आप संवाद की शुरुआत प्लस साइड से करते हैं। सवाल दो, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते किस बात से निराश किया? दूसरा सवाल बीते सप्ताह की नकारात्मक बातों या निराशाओं पर केंद्रित है। इसमें साथी को सम्मानपूर्वक आलोचना करने या चोट की बात उठाने का मौका मिलता है जो उसने महसूस की हो। यह सवाल पूछना साहस मानता है, क्योंकि कोई भी यह नहीं सुनना चाहता कि उसने दूसरे को निराश किया है, लेकिन यही खुलापन एक स्वस्थ रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। यह सवाल एक ऐसा ढांचा देता है जिसमें छोटी चोटें, झुंझलाहट या अधूरी उम्मीदें छुपाई नहीं जाती, बल्कि समय रहते उठाई जा सकती है। सवाल का महत्व, मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया का महत्व खासकर दबी असंतुष्टियों को उजागर करने में है, इससे पहले कि वे बड़े गुस्से में बदल जाएं। कई रिश्तों में गंभीर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि नकारात्मक भावनाएं साझा नहीं की जाती और समय के साथ जमा होती जाती हैं। अगर निराशाएं नियमित रूप से कही जा सके तो कोई भी साथी झुंझलाहट मन में दबाने के लिए मजबूर नहीं होता। इसके बजाय दोनों मिलकर समझ सकते हैं कि क्या गलत हुआ और गलत फहमियां दूर कर सकते हैं। जोड़ों की थेरेपी से जुड़े शोध बताते हैं कि संरचनात्मक रूप से विवादों को उठाना रिश्ते की संतुष्टि बढ़ाता है। जो जोड़े असहमति को छुपाते हैं उनमें अक्सर गहरी नाराजगी पनप जाती है जो साथ को जहरीला बना सकती है। खासकर अनकही निराशाएं समय के साथ तिरस्कार में बदल सकती हैं, और विशेषज्ञों के अनुसार तिरस्कार रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दूसरा सवाल एक तरह का सुरक्षा वाल्व है। यह भाप निकाल देता है इससे पहले कि केतली फट जाए। निराशाओं को शब्द देने का साप्ताहिक मौका छोटी झुंझलाहटों को बड़े झगड़ों में बदलने से रोकता है। जरूरी है कि दोनों साथी समझें, हर कोई कभी ना कभी गलती करता है या कुछ नजरअंदाज कर देता है। सवाल का मकसद आरोप लगाना नहीं बल्कि ईमानदारी से साझा करना है कि क्या दुख पहुंचा या उदास किया। इसे दूसरा सीख सकता है और दोनों मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं या कम से कम माफी मांग सकते हैं। सवाल दो के जवाबों के उदाहरण यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि निराशा वाले सवाल का जवाब कैसा हो सकता है। ये जवाब उस साथी द्वारा मैं के रूप में दिए जाते हैं जो निराश हुआ है। मैं निराश हुई जब तुमने हमारा शुक्रवार का डिनर प्लान रद्द कर दिया। मैं उसका इंतजार कर रही था और ऐसा लगा जैसे यह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। मुझे निराशा हुई कि तुमने पिछले हफ्ते मेरे दिन के बारे में मुश्किल से पूछा। मुझे तुमसे ज्यादा रुचि और ध्यान की उम्मीद थी। मैं दुखी और निराश हुई जब तुम मेरे माता पिता से मिलने की हमारी मुलाकात भूल गई। वह मुलाकात मेरे लिए जरूरी थी और यह जानकर दुख हुआ कि तुम्हें वह याद नहीं रही। मुझे निराशा हुई कि तुमने घर के काम में उतनी मदद नहीं की जितना वादा किया था। इससे मुझे सब कुछ अकेले करने जैसा महसूस हुआ। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं बहुत तनाव में थी तो तुम मुझे ज्यादा समर्थन दोगी। मुझे निराशा हुई कि तुमने मेरे इशारे नहीं समझे और मैं अपने तनाव में अकेली रह गई। ये बयान विशिष्ट हैं पर किसी खास स्थिति या व्यवहार का जिक्र करते हैं जो निराशाजनक था। ये जरूरी है क्योंकि सामान्य या व्यापक आलोचना तुम हमेशा निराश करते होती हो मददगार नहीं होती और ज्यादा चोट पहुंचाती है। बेहतर है कि ठोस उदाहरण दिए जाएं, जैसे ऊपर, और अपनी भावनाओं पर टिके रहें। मैं निराश हुई जब। सवाल दो के जवाब के साथ व्यवहार यह सवाल और इसके जवाब शायद साप्ताहिक संवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जो पूछता है और फिर आलोचना सुनता है उसके लिए जरूरी है कि रक्षात्मक ना हो। इसमें अभ्यास चाहिए। हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर खुद को सही ठहराने या समझाने की होती है कि दूसरा गलत है, लेकिन यहाँ संयम बरतना चाहिए। जब साथी अपनी निराशा बता रहा हो वो सबसे पहले सुनना, ना टोका जाए ना तुरंत विरोध किया जाए। उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। भले ही आप स्थिति को अलग तरह से देखें, यह स्वीकार करें कि आपके साथी को चोट या निराशा महसूस हुई। दूसरे के एहसास को एक सच्चाई के रूप में मानना चाहिए। सुनने के बाद आप सावधानी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए सुनने वाला कह सकता है, धन्यवाद जो तुमने मुझे बताया, मुझे दुख है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। इससे आप यह संकेत देते हैं कि आप भावनाओं को गंभीरता से लेते हैं। अगर कोई सफाई जरूरी हो, शायद कोई गलतफहमी थी, तो वह समझ दिखाने के बाद ही आए। जरूरी
हाँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, जैसी बहानेबाजी तुरंत न करें। पहले साथी को महसूस हो कि उसकी निराशा सुनी पर स्वीकार की गई है। आगे बढ़ते हुए आप मिलकर भविष्य की ओर देख सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा फिर ना हो? या मुझे पता नहीं था कि इससे तुम्हें इतनी चोट पहुंचेगी। मैं अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ? ऐसे सवाल परिवर्तन की इच्छा दिखाते हैं। इससे संवाद गलतियों की निंदा से हटकर एक संरचनात्मक आदान प्रदान बन जाता है, जो आपसी समझ को गहरा करता है। अक्सर पता चलता है कि साथी की निराशा उतनी भारी नहीं थी अगर खुलकर बात हो गई। उल्टा, निराश साथी को राहत मिलती है और दूसरा अपने प्रिय की जरूरतों के बारे में कुछ नया सीखता है। एक और बात, जो साथी निराशा जाहिर करता है उसे तटस्थ शांत लहजा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। साप्ताहिक रिवाज का फायदा है कि आप अब गुस्से में नहीं बोल रहे। स्थिति शायद कुछ दिन पुरानी है, बल्कि थोड़े फासले से। इससे शब्दों का चयन सावधानी से होता है। जब दोनों जानते हैं कि आलोचना इस माहौल में प्यार से की जाती है, तो उसे व्यक्तिगत हमले की तरह लेना आसान नहीं होता। मकसद है मिलकर आगे बढ़ना और भविष्य में अनावश्यक दर्द से बचना। सवाल तीन, मैं तुम्हारे लिए अपने बारे में क्या बदल सकती हूँ? तीसरा सवाल आगे की ओर देखता है। यह साथी को इच्छाएं या जरूरतें बताने के लिए आमंत्रित करता है, जो पूछने वाले के व्यवहार या रवैये में बदलाव से जुड़ी हों। मूल रूप से आप पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए बेहतर साथी बनने के लिए क्या कर सकती हूँ, या क्या कोई बात है जो तुम मुझसे अलग चाहोगी। यह सवाल साहस मांगता है, क्योंकि आप आलोचना और सुधार के सुझावों के लिए खुद को खोलते हैं। साथ ही यह रिश्ते में आगे बढ़ने की बड़ी इच्छा दिखाता है। पूछने वाला संकेत देता है, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारी नज़र में कैसे बदल सकती हूँ। मैं खुद पर काम करने को तैयार हूँ। सवाल का महत्व। इस तीसरे सवाल का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए खुलेपन और रिश्ते में समझौते की इच्छा में है। कोई भी रिश्ता लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता अगर दोनों जिद्दी होकर न बदलें और एक दूसरे का ख्याल न रखें। रिश्तों पर शोध से पता चला है कि अनुकूलनशीलता और साथी के लिए खुद को बदलने की इच्छा दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए जरूरी है। वे जोड़े जिनमें दोनों कभी कभी अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने और अपने व्यवहार को सुधारने को तैयार रहते हैं, आमतौर पर चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालते हैं। यह सवाल इसी सोच को बढ़ावा देता है। आप साथी को संरचनात्मक फीडबैक देने के लिए आमंत्रित करते हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार होने का संकेत देते हैं। यहाँ नजरिया जरूरी है। बात यह नहीं है कि कोई साथी खुद को पूरी तरह बदल ले, बल्कि छोटे या बड़े समायोजन पहचानने की है जो साथ को और सुखद बना सकते हैं। अक्सर ये व्यवहार या आदतें होती हैं, न कि मूल व्यक्तित्व। उदाहरण के लिए, बेहतर सुनना, रोजमर्रा के कामों में मदद, समय पर आना या ज्यादा स्नेह दिखाना, जैसा कि साथी को चाहिए या जरूरी लगे। मैं अपने बारे में क्या बदल सकती हूँ? सवाल में विनम्रता और सम्मान भी है। आप साथी की जरूरतों को गंभीरता से लेते हैं और रिश्ते की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सवाल तीन के जवाबों के उदाहरण। इन सवालों के जवाब इच्छाओं या अनुरोधों के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि एक साथी दूसरे से क्या चाह सकता है। मैं चाहूंगी कि जब हम साथ समय बिताएं तो तुम शाम को अपना फोन ज्यादा बार एक तरफ रखो, तब मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह मेरे साथ हो। मेरे लिए तुम कोशिश कर सकते हो कि हमारी मुलाकातों पर समय पर आओ। जब तुम बार बार देर से आते हो तो मुझे लगता है कि मेरी इज्जत नहीं हो रही। ज्यादा समय पर आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे मदद मिलेगी अगर तुम मुझे ज्यादा जगह दो जब मुझे अकेले समय चाहिए, बिना इसे व्यक्तिगत लिए। कभी कभी मुझे बस एक घंटा अपने लिए चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम खुद से हमारे लिए समय निकालो, जैसे कोई डेट नाइट या साथ में वीकेंड प्लान करो। मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसी पहल हमेशा मुझसे होती है और मैं चाहूंगी कि तुम भी कभी मुझे चौंकाओ। तुम अपने बारे में यह बदल सकते हो कि मुझे ज्यादा बार दिखाओ या कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे छोटे छोटे प्यार के इशारे जरूरी लगते हैं और इसमें तुम थोड़े उदार हो सकते हो। इन सभी जवाबों में एक साथी की जरूरतें झलकती हैं, जो दूसरे से किसी खास बदलाव की इच्छा के साथ जुड़ी है। ध्यान दें, शब्दावली सकारात्मक और मैं केंद्रित है। मैं चाहूंगी कि तुम, न कि आरोप लगाने वाली, तुम कभी नहीं करती बदलो। यह रचनात्मक भाषा जरूरी है ताकि दूसरा अनुरोध को स्वीकार कर सके बिना खुद को बंद किए। मदद करता है अगर चाहने वाला बताए कि यह बदलाव उसके लिए क्यों जरूरी है।
जैसे उदाहरणों में, तब मुझे ज्यादा सम्मानित महसूस होता है,
जब मुझे ज्यादा प्यार महसूस होता है। इससे साथ ही इच्छा के पीछे का अर्थ समझता है। सवाल तीन के जवाब के साथ व्यवहार पूछने वाले के लिए, जिसे ये बदलाव सुनने को मिलते हैं, फिर से खुले और रक्षात्मक न होकर सुनना जरूरी है। यह सुनना मुश्किल हो सकता है कि साथी की नज़र में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इससे अहम को चोट लग सकती है। फिर भी साथी की स्थिति को ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। वह यह इच्छा इसलिए साझा करता है क्योंकि उसे रिश्ता जरूरी है और वह मानता है कि इससे आप दोनों और खुश रह सकते हैं। इस इच्छा को प्यार के सबूत के रूप में लें, न कि हमले के रूप में, क्योंकि साथी चुप भी रह सकता था कि वह बोल रहा है। यह विश्वास और बदलाव की उम्मीद दिखाता है। जब आप इच्छाएं सुने तो सराहना के साथ प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, धन्यवाद जो तुमने मुझे बताया, मुझे पता ही नहीं था कि यह तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। भले ही आप अंदर से सोचें, ओह यह मेरे लिए मुश्किल है, पहले यह संकेत दें कि आप इच्छा को गंभीरता से लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी इस पर काम करने की। आपको तुरंत कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे आप निभा ना सकें। अगर कोई इच्छा बहुत बड़ी या अस्पष्ट है तो पूछ सकते हैं, क्या तुम उदाहरण दे सकते हो कि तुम्हारा मतलब क्या है, या क्या चीज तुम्हें ज्यादा प्यार महसूस कराएगी। इससे आप समझने की इच्छा भी दिखाते हैं। कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं हो सकती और यह साथी को ईमानदारी से बताना चाहिए, लेकिन बिना अपनी इच्छा तुरंत वापस लिए। जैसे, समय पर आना सच में मेरी कमजोरी है, मैं इस पर काम करूंगा और शायद तुम मदद कर सकते हो अगर निकलने से पहले मुझे याद दिला दो। इस तरह आप मिलकर समस्या सुलझाने का तरीका अपनाते हैं। जरूरी है कार्यान्वयन की संभावना देखना और ईमानदार रहना। अगर कोई इच्छा आपकी प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है या आपको बहुत असहज लगती है तो यह सम्मानपूर्वक बताएं। अक्सर समझौता मिल जाता है। उदाहरण, साथी सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा शारीरिक निकटता चाहता है लेकिन आप इसमें बहुत शर्मीले हैं। समझौता यह हो सकता है कि आप छोटे इशारे बढ़ाएं, लेकिन ऐसी सीमा में जिसमें आप सहज हों। इस पर बात की जा सकती है। संक्षेप में, इस तीसरे सवाल के जवाब पर प्रतिक्रिया में यह दिखना चाहिए कि आप दूसरे की ओर बढ़ने को तैयार हैं। यह रवैया विश्वास को बहुत मजबूत करता है। साथी देखता है मेरी जरूरतें उसके लिए जरूरी हैं। वह कोशिश करने को तैयार है और भले ही हर इच्छा पूरी न हो सके, गंभीरता मायने रखती है, जिससे दोनों अपने रिश्ते पर काम करते हैं। ऐसे जोड़े समय के साथ टीम भावना विकसित करते हैं। आप खुद को एक इकाई मानते हैं जो समस्याओं पर मिलकर काम करती है, न कि एक दूसरे के खिलाफ। व्यावहारिक सुझाव, रोजमर्रा में साप्ताहिक संवाद कैसे सफल हो, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस योजना को सच में हर हफ्ते लागू करना। रोजमर्रा की जिंदगी व्यस्त है, काम, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां। ऐसे में जोड़ी संवाद आसानी से पीछे छूट सकता है, ताकि साप्ताहिक रिवाज सिर्फ एक अच्छा इरादा न रह जाए। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव है कि इसे व्यवस्थित रूप से कैसे किया जा सकता है। एक, तय समय तय करें। एक खास दिन और समय तय करें जो दोनों के लिए व्यावहारिक हो, जैसे रविवार रात खाने के बाद या शनिवार सुबह कॉफी के साथ। इस समय को एक जरूरी कैलेंडर एंट्री की तरह दर्ज करें, इसे प्राथमिकता दें। तय रूटीन से संवाद टलता नहीं है। कई जोड़े ऐसा समय चुनते हैं जब सप्ताह शांत हो या अभी शुरू न हुआ हो, ताकि दोनों का मन खाली हो। दो, बिना बाधा माहौल बनाएं। ऐसी जगह चुनें जहां आप बिना बाधा हो। फोन साइलेंट करें, बच्चों को व्यस्त या सुला दें और सुखद माहौल बनाएं। कुछ जोड़े सोफे पर बैठते हैं, कुछ बातचीत के लिए टहलने जाते हैं। जरूरी है कि दोनों सहज हों और सच में सुन सकें। एक सुझाव, रिवाज की शुरुआत किसी छोटी नेटिक्वेट से करें, जैसे गले लगना या आंखों में देखना, ताकि यह एहसास हो अब हम पूरी तरह एक दूसरे के लिए हैं। तीन सवालों पर ध्यान केंद्रित करें। हर साथी के लिए तीन सवालों की संरचना पर टिके रहें। यह स्पष्ट ढांचा मदद करता है कि विषय भटके नहीं या रोजमर्रा के कामों में उलझ न जाए। बातचीत में और बातें आ सकती हैं, लेकिन मुख्य ध्यान चौंकाने, निराशा और बदलाव की इच्छा पर रखें। अगर अन्य विषय, घर, पैसे, रोजमर्रा की बातें उठाने हों, तो उन्हें पहले या बाद में निपटाएं, या अगर संभव हो किसी और समय के लिए टाल दें। उससे रिश्ते की बातचीत भावनात्मक रूप से केंद्रित रहती है। चार, सक्रिय सुनना बिना टोके। यह नियम बनाए कि हमेशा एक ही बोले और दूसरा सुने, जब तक बोलने वाला संकेत न दे कि वो सब कह चुका है। सक्रिय सुनने का मतलब है सच में ध्यान देना, सिर हिलाना, आंखों में देखना और साथ साथ जवाब न सोचना। बोलने वाले को न टोका जाए न आंपा जाए। यह नियम अनुशासन मांगता है लेकिन फायदा देता है।
दोनों को सम्मान और गंभीरता महसूस होती है। अगर मदद मिले तो आप प्रतीकात्मक बोलने की वस्तु जैसे कोई खास चीज पकड़ना इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पता चले कि किसकी बारी है। 5. भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें। खासकर जब निराशा और बदलाव की इच्छाएं उठे तो जरूरी है कि झगड़ा ना हो। यह संवाद ऐसे समय के लिए न रखें जब आप पहले से ही नाराज हों। ऐसा समय चुनें जब आप दोनों शांत हों। अगर बातचीत के दौरान माहौल बिगड़ जाए, जैसे कोई खुद को आहत महसूस करे, तो अपने साझा मकसद को याद करें। जीतना या सही साबित होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना। टोन और शब्दों में सम्मान रखें। जरूरत हो तो थोड़ी देर का ब्रेक लें, गहरी सांस लें और फिर शांत होकर आगे बढ़ें। 6. समय सीमा समायोजित करें। साप्ताहिक संवाद घंटों लंबा
होना जरूरी नहीं। अक्सर 20 से 30 मिनट काफी होते हैं अगर दोनों मुद्दे पर रहें। चाहे तो ज्यादा देर बात कर सकते हैं अगर दोनों चाहें। जरूरी है कि समय का दबाव न हो। पर्याप्त समय रखें और खुद के साथ नरमी बरतें। अगर कभी बातचीत छोटी या सतही हो जाए तो कोई बात नहीं, अगली हफ्ते फिर मौका है। नियमितता लंबाई से ज्यादा जरूरी है। हर हफ्ते और छोटी लेकिन ध्यानपूर्ण बातचीत तिमाही में एक लंबी बातचीत से ज्यादा असरदार है। 7. सकारात्मक नोट पर समाप्त करें। अपनी साप्ताहिक बातचीत को संभव हो तो किसी सकारात्मक बात के साथ खत्म करें। यह एक साधारण धन्यवाद हो सकता है, धन्यवाद जो तुमने सुना और इतनी ईमानदारी दिखाई, एक गले लगना या चुंबन, या आप इसे किसी छोटी सी दो जन की गतिविधि से जोड़ सकते हैं। कुछ जोड़े इसके बाद डेट नाइट रखते हैं, जैसे साथ में फिल्म देखना, टहलना या कुछ स्वादिष्ट खाना। इससे संवाद रिवाज किसी सुखद चीज से जुड़ जाता है और दोनों को इसका इंतजार रहता है। यह भी मजबूत करता है कि आलोचना के बावजूद अंत में साथ हैं और प्यार करते हैं। 8. टिके रहे और लचीले रहे। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद कोई साथी शुरू में झिझके। अगर शुरुआत में दिक्कत आए तो हार न माने, अभ्यास से सब आसान होता है। कुछ हफ्तों में आप अपनी लय पालेंगे, पर लचीले रहें। अगर किसी हफ्ते समय बहुत कम हो तो बातचीत को उसी हफ्ते किसी और दिन के लिए टाल दें, बजाय छोड़ने के। अगर कभी सच में कुछ आ जाए तो बातचीत फोन पर भी हो सकती है अगर कोई यात्रा पर है। जरूरी है कि रूटीन बनी रहे। इससे संकेत मिलता है हमारा रिश्ता हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते। निष्कर्ष 3 सवालों: मैंने तुम्हें किस बात से चौंकाया, मैंने किस बात से निराश किया
और मैं अपने बारे में क्या बदल सकता सकती हूँ के साथ साप्ताहिक संबंध संवाद।